पृष्ठ संख्या 56। भक्ति और श्रृंगार की विभाजक रेखा सूक्ष्म है। भक्ति की अनुभूति की सघनता को व्यक्त करने के लिए बहुत बार राधा कृष्ण के चरित्र और दाम्पत्य जीवन के विविध प्रतीकों का सहारा लिया गया। कबीर जैसे बिहड़ प्रकृति के कवि भाव विभोर होकर कहते हैं, हरि मोरा पीयू मैं हरि की बहुरिया। भक्ति संबंध की निकटता को व्यक्त करने के लिए तुलसी जैसे मर्यादा प्रिय कवि को भी रामचरितमानस का प्रबंध संपन्न करते हुए एकदम अंतिम दोहे में सब कुछ कह लेने के बाद कामी ही नारी पियारी जिमी जैसी उपमा ही सूझी। कालांतर में राधा कृष्ण के चरित्र अपने रूप में हट गए और वे महज दाम्पत्य जीवन के प्रतीक रूप में अवशिष्ट रह गए। प्रेम और भक्ति की संपृक्त अनुभूति में से भक्ति क्रमशः क्षीण पड़ती गई और प्रेम का श्रृंगारिक रूप केंद्र में आ गया। भक्ति काल के रीति काल में रूपांतरण की यही प्रक्रिया है। रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ है जो उस युग के एकांत प्रशमित से वातावरण के अनुकूल है। लगता है जैसे सारा साहित्यिक परिदृश्य यहाँ अचल हो गया हो। रीति काव्य की बनावट में इसीलिए ऐतिहासिक सामाजिक द्वंद्व नहीं दिखाई देते। रीति काव्य के विवेचन में नगेंद्र ने दिखाया है कि इसका स्वरूप प्रायः सर्वत्र ही गार्हस्थिक है, पर यह गार्हस्थिकता स्पष्ट ही चंद जायसी सूर या तुलसी की परिकल्पना से भिन्न है। यहाँ की गार्हस्थिकता महज अंतःपुर तक सीमित है, उसे बाहर की बैठक से जोड़ने वाले आंगन तक भी वह कम जाती है। रीतिकालीन काव्य की विशिष्टता इस बात में है कि उसकी मूल प्रेरणा ऐहिक है। भक्ति काल की ईश्वर केंद्रित दृष्टि के सामने इस मनुष्य केंद्रित दृष्टि का अंतर साफ समझ में आता है और तब उस दृष्टि की मौलिकता और साहसिकता की समझ भी आती है। आदिकालीन कवि ने अपने चरित नायक को ईश्वर सदृश महिमावान अंकित किया था। भक्ति काल में ईश्वर की नर लीला का चित्रण है। रीति काल में कवि ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण करता है। यहाँ भक्ति काल और रीति काल की प्राथमिकता के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। भक्त तुलसीदास लिखते हैं, कभी न होऊं नहीं चतुर कहावहूं, मति अनुरूप राम गुण गावहूं। पर पृष्ठ संख्या 57। पर आचार्य भिखारी दास का कहना है, आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। एक के लिए ईश्वर भक्ति प्रधान है और राम का गुणगान प्रमुख उद्देश्य है। इस प्रक्रिया में कविता भी बन जाए तो अच्छा है। दूसरे के लिए कविता रचना प्रमुख है। यदि कविता ना बन सके तो लाचारी में उसे राधा कृष्ण का स्मरण मान लिया जाए। स्पष्ट ही रीतिकालीन कवि का आत्मविश्वास अपने कवि कर्म में स्पृहणीय है। परिणाम पर तो किसी रचनाकार का वश नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में रीतिकालीन कवि कर्म भक्ति काल की तुलना में सजग हो जाता है। रीतिकालीन काव्य विशेषतः रीतिबद्ध काव्य में भाषा के प्रति दृष्टिकोण बदलता है। दरबारी वातावरण के समानांतर भाषा अब कृत्रिम और अलंकरण प्रधान हो जाती है, या कहना चाहिए छंद अलंकार प्रधान हो जाते हैं, भाषा गौण हो जाती है। रीतिकाल के प्रवर्तक केशव की काव्य भाषा का रूप ऐसा ही है। काव्य भाषा के आधार रूप को लेकर भी केशव दास का रुख परिवर्तित होता है। भक्तिकालीन कवि कबीर जायसी और तुलसी संस्कृत से हटकर भाखा का प्रयोग आंतरिक संतोष और उल्लास के साथ करते हैं। संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, कबीर आदि अंत जैसी कथा अहे, लिखी भाखा चौपाई कहे जायसी। भाखा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई तुलसी। परंतु केशवदास के लिए प्रसिद्ध है कि वे भाखा में रचना करने के कारण लज्जित और कुंठित थे। भाखा बोली न जानही जिनके कुल के दास, भाखा कवि भो मंद मति तेही कुल केशव दास। यह ठीक है कि रीतिकाल के प्रवर्तक कवि की यह कुंठा आगे की कवियों में शमित हुई और उनकी काव्य भाषा में सहज प्रवाह है, पर अलंकरण का मोह फिर भी बना रहा। घनानंद अथवा ठाकुर जैसे स्वच्छंद प्रकृति के कवियों ने रीतिकालीन भाषा के जड़ीभूत होते हुए रूप के प्रति विद्रोह किया और काव्य भाषा की रचनात्मक ऊर्जा को फिर से उन्मुक्त करने का प्रयत्न किया, पर भाषा की यह मुक्ति व्यक्तिगत कवियों में ही संभव हो पाई। रीतिकालीन काव्य भाषा का सामान्य रूप क्रमशः अधिकाधिक स्थिर और शास्त्रीय होता गया। रीतिकालीन भाषा के क्रमशः जड़ होने के पीछे एक कारण यह भी था कि जहां अन्य युगों में काव्य भाषा के कई आधार कवियों को विकल्प रूप में सुलभ थे, खड़ी बोली ब्रज भाषा अवधि, वहां रीतिकाल में आकर काव्य भाषा का एक ही आधार प्रतिष्ठित हो गया, ब्रज भाषा। स्वभावतः कबीर और सूर के समय से लेकर भिखारी दास तक ब्रज भाषा के पुनर्नवीकरण की प्रक्रिया जितनी बार संभव हो सकती थी। फलतः उत्तर रीति काल से ब्रज भाषा की शक्ति का जो छीजना आरंभ हुआ वह भारतेंदु काल तक आकर पूरा हो गया। आधुनिक काल में बुझ जाने के पूर्व ब्रज भाषा की ज्योति मानो रत्नाकर में आखिरी बार भभक उठी, एक लंबी और गौरवशाली यात्रा का वैसा ही महिमामय अंत। रीति काल में कविता अधिकांशतः धर्म से विलग होकर ऐहिक रूप में विकसित होती है। रीतिकालीन कवि के लिए धर्म और दर्शन की प्रेरणा सार्थक नहीं रह गई और एक माने पृष्ठ संख्या 58 में वह अधिक मानवीय कविता का सृष्टा है जिसका पूरा रूप आधुनिक काल में आकर खुलता है। यह रीतिकाल एक आवश्यक कड़ी है भक्ति काल और आधुनिक काल के बीच, जिसका प्रतीक रूप हमें भारतेंदु के व्यक्तित्व में मिलता है, जहाँ भक्ति, रीति और आधुनिकता के संस्कार तथा विचार क्रमशः विकसित होते दिखाई देते हैं। भारतेंदु में दो युगों का समापन और तीसरे का प्रवर्तन एक साथ होता है। वे कविता लिखते हैं ब्रजभाषा में और गद्य खड़ी बोली में। भाषा के स्तर पर रीतिकाल का कवि या तो पूरी तौर पर सफल होता है या फिर एक कलाबाज होकर रह जाता है। मध्यम स्थिति की छूट उसके लिए शेष नहीं रहती। घनानंद रीतिकालीन मनोवृत्ति के श्रेष्ठतम अंश का प्रतिनिधित्व यह कहकर करते हैं, मोही तो मेरे कवित्व बनावत। इस आधार पर घनानंद को प्रायः स्वच्छंदतावादी कहा जाता है और किसी सीमा तक वे हैं भी, पर यह उक्ति कविता की एकदम आधुनिक व्याख्या के निकट है, जहां रचना एक स्वायत्त जैविक प्रक्रिया के रूप में उठ खड़ी होती है। रीति और स्वच्छंदता अपने में ही विरोधी पद हैं, फिर यह दृष्टिकोण तो और आगे जाता है। इस दृष्टि से अपेक्षया स्थिर परिदृश्य पर भी रीतिकाल के अपने वैविध्य हैं। रीतिकालीन काव्य का आकर्षण समाज ने क्यों बना रहा, इस प्रश्न से आलोचक और इतिहासकार बार बार उलझते हैं और घूम फिर कर एक ही समाधान उभरता है। इस काव्य की श्रृंगारिकता को गाढ़े रेखांकित करके रीति कवि की मानसिकता का विश्लेषण करते हुए अभी यह लक्षित किया गया कि रीतिकाल में कवि ईश्वर और मनुष्य दोनों का मनुष्य रूप में चित्रण करता है। इस प्रक्रिया में रीति काव्य का एक नया दुरुखा स्वरूप बनता है। उनके चित्रण में राधा कृष्ण और सामान्य प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे में घुल मिल गए हैं। जब जैसी मनस्थिति हुई वैसी ही अनुभूति निधर गई। प्रेम के दौरान यों भी देवता सबसे अधिक मनुष्य है। अर्थ संश्लिष्टता यहाँ भाषा के स्तर पर विकसित नहीं है, पर पाठक या श्रोता के आस्वाद में उस प्रेम के अलग अलग यादृच्छिक रूप हैं, जिन्हें लौकिक या अलौकिक दोनों कहा जा सकता है। एक सामान्यतः धर्म भीरु समाज को काव्यास्वाद की यह बहुत बड़ी सहूलियत मिल गई। रीतिकालीन श्रृंगार चित्रण की यह अपने में विशिष्टता है। आकर्षण का एक दूसरा कारण यह है कि रीतिकालीन काव्य भले राज्याश्रय में लिखा गया हो, ये ग्रंथ आश्रयदाताओं को समर्पित हों या उनका नामकरण इन कृपालु शासकों के नाम पर हुआ हो और वे उनकी साहित्य शिक्षा के लिए रचे गए हों, पर इन मुक्तकों में अंकित जीवन प्रायः शत प्रतिशत सामान्य गृहस्थ घरों का है। ये नायक नायिकाएं राजा रानियां राजकुमारियां नहीं हैं, वरन साधारण गोप गोपियां या खाते पीते घरों की युवतियां हैं, जिन्हें उस युग का मध्य वर्ग कहा जा सकता है। वीरगाथा काल के काव्य में श्रृंगार के उपकरण राजकीय और सामंतिक जीवन के चरित्र थे। रीतिकाल का श्रृंगार पूरा का पूरा इस मध्य वर्ग के आश्रित है। यह इन दोनों कालों में प्रचलित क्रमशः प्रबंध और मुक्तक विधान के अंतर से भी जड़ी हुई स्थिति है। प्रबंध का नायक राजन्य वर्ग का होगा, मुक्तक का चरित्र मध्य वर्ग का। समाज के इस वर्ग के श्रृंगारिक जीवन और कभी कभी उसमें पलते व्यभिचार का चित्रण सूक्ष्म ब्यौरों में इन कवियों ने किया है। रीतिकालीन काव्य की तुलना उर्दू शायरी से हो तो यह स्वाभाविक है, यद्यपि इस तरह के ब्यौरेवार अध्ययन कम हुए हैं। राज्याश्रय में रचना, मुक्तक विधान, चमत्कार प्रियता, श्रृंगार चित्रण और रीति निर्भरता ये ऐसे तत्व हैं जो रीति काव्य और प्रायः उसी के समानांतर चलने वाली उर्दू शायरी में समान रूप से मिलेंगे। रीति परंपरा के श्रेष्ठ कवि देव, घनानंद पृष्ठ संख्या 59, पद्माकर और उर्दू के दो बड़े शायर मीर गालिब, ये सभी प्राय 1725 ईस्वी से 1825 ईस्वी के बीच के 100 वर्षों में समकालीन और कार्यरत थे। 1750 के आसपास मीर देव घनानंद लिख रहे थे 1825 के आसपास पद्माकर और गालिब। ये एक ही भाषा क्षेत्र के कवि थे, यद्यपि उनकी काव्य भाषा प्रयोग विधि और काव्य परंपरा में अंतर था। रोचक बात यह है कि बोलचाल के रूप में उर्दू हिंदी से अलग नहीं है। ब्रज, अवधी या भोजपुरी, मालवी की तुलना में उर्दू आधुनिक खड़ी बोली हिंदी के कहीं अधिक निकट है उच्चारण और व्याकरण दोनों दृष्टियों से, पर काव्य भाषा के स्तर पर उनके रूप अलग हो जाते हैं। उर्दू काव्य भाषा की विशिष्टता इस बात में है कि संप्रेषण के लिए विशेषतः अपने प्रधान काव्य रूप गजल के संदर्भ में वह भाषा को सीधे साधे रूप में प्रयुक्त करती है। उर्दू कविता पर बातचीत में रघुपति सहाय फिराक कहते हैं, सुगमता और सरलता के साथ पेचीदा से पेचीदा बातें, नाजुक से नाजुक ख्याल कहे गए हैं। इस संदर्भ में उसकी स्थिति बहुत कुछ अद्वितीय है। प्रायः सभी विकसित काव्य भाषाएं बिंबों अथवा भाव चित्रों का प्रयोग करती हुई व्यंजना के माध्यम से संप्रेषण करती हैं। उर्दू भाषा में लाक्षणिक प्रयोगों की बहुलता तो मिलती है, पर उर्दू में लक्षणा से बोलचाल की भाषा के तेवर में मुहावरा बनता है, बिंब नहीं। इसलिए उर्दू कविता में साफ गोई को काव्य भाषा का मिजाज माना जाता है। इस साफ गोई के कारण उर्दू कविता का आस्वादन समाज के ऊंचे नीचे विभिन्न स्तरों पर संभव रहा है। उसकी लोकप्रियता असंदिग्ध रही, पर इससे उर्दू काव्य भाषा की अभिव्यक्ति सामर्थ्य सीमित जरूर हो गई। हिंदी काव्य में अभिव्यक्ति की सरलता और सादगी को प्रश्रय मिला है, पर सूक्ति काव्य के सीमित क्षेत्र में। रहीम या कभी कभी बिहारी की सूक्तियाँ बड़ी मर्मस्पर्शी मानी जाती हैं, पर इतने पर भी सूक्ति काव्य को काव्य के मुख्य क्षेत्र से बाहर रखा गया है। हिंदी और उर्दू की काव्य भाषा में एक और संबद्ध अंतर और है। एक साथ ही बाजार और दरबार की भाषा बने रहने के कारण उर्दू काव्य भाषा बोलचाल की भाषा से दूर नहीं हुई। उसके अपने पूरे नाम जबान उर्दूए मुअल्ला में बाजार और दरबार दोनों झलकते हैं। उर्दू शायर शेर लिखते नहीं कहते हैं। फलतः उर्दू काव्य भाषा का मूल तत्व मुहावरे में जितना है उतना बिंब में नहीं। सामान्यतः काव्य भाषा की व्यंजना क्षमता दूर तक प्रतीकों और बिंबों के आश्रित रहती है। लक्षणा पर आधारित मुहावरा बात का उठना बनना चलना बिगड़ना संभलना आदि मूलतः बोलचाल की भाषा का गुण है। इस संदर्भ में उर्दू की स्थिति अन्य काव्य भाषाओं से अलग है। हिंदी तथा अन्य काव्य भाषाओं में संज्ञा अथवा नामवाची शब्दावली का अधिक महत्व होता है, क्योंकि ऐसे शब्द सांस्कृतिक संदर्भों से जुड़े रहते हैं। दूसरे कविता की रचना प्रक्रिया में प्रतीक बिंब आदि का विधान इस नामवाची शब्दावली के ही आधार पर होता है। पर्यायों से भी वहाँ कुछ सुविधा होती है, पर उर्दू में सहायक क्रिया तथा कुछ अव्यय शब्दों के साथ बनने वाले मुहावरे का विशिष्ट महत्व है। यहाँ अरबी फारसी से गृहित बहुत सी तत्सम संज्ञाएं तो बहुत बार सीधे समझी भी नहीं जा सकती। इसलिए कविता की रचना प्रक्रिया प्रायः बोलचाल के मुहावरे पर आश्रित होती है, जो उर्दू का वास्तविक रूप है। उदाहरण के तौर पर गालिब के प्रसिद्ध शेर की ये पंक्तियां दृष्टव्य हैं। न था कुछ तो खुदा था, कुछ न होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, न होता मैं तो क्या होता। यहाँ पूरा काव्य अनुभव होना मुहावरे के माध्यम से संप्रेषित हो रहा है। साथ में एक अन्य मुहावरा या लाक्षणिक प्रयोग डुबोया सहायक स्थिति में है। फिर होना तथा डुबोया का अपना अंतर विरोध व्यंजना को और तीव्र करता है, पर बोलचाल का मुहावरा बहुत पृष्ठ संख्या 60 जानदार होने पर भी सभी बात को एक बारगी कहकर खत्म कर देता है। बिंब से जो द्वंद्वात्मक तथा गतिशील अर्थ प्रक्रिया संभव होती वह मुहावरे के माध्यम से नहीं चल पाती। बहुत कुछ इसीलिए उर्दू की भाषिक संरचना मुक्तक काव्य के अनुकूल है। लंबी कविता या प्रबंध का तारतम्य उसमें प्रभावशाली रूप में विकसित नहीं हो पाता। उत्तर मध्यकालीन दरबारी वातावरण तो यहाँ मुक्तक रचना का एक बाहरी कारण है। वस्तुतः उर्दू काव्य भाषा की प्रकृति स्वयं उसे मुक्तक रूप में ही अधिक अच्छी तरह ढाल पाती है। अर्थ की द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के अभाव में एक शेर का संबंध अगले शेर से विषय वस्तु के स्तर पर भले हो, भाषिक स्तर पर नहीं होता। प्रत्येक शेर का काव्य अनुभव अपने में अलग संपन्न होता है। उर्दू का सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रभावशाली काव्य रूप गजल एक विषय पर कहे गए शेरों का संकलन है, एक पूरी भाषिक संरचना नहीं। यह उर्दू जो बोलचाल के स्तर पर आधुनिक परिनिष्ठित हिंदी के सबसे निकट है, काव्य भाषा के स्तर पर साफ गोई और मुहावरे से परिचालित होने के कारण हिंदी के संश्लिष्ट और द्वंद्वात्मक अर्थ प्रक्रिया से दूर पड़ जाती है। यही कारण है जिससे व्युत्पत्ति और व्याकरणगत भिन्नता के होने पर भी खड़ी बोली ब्रज अवधी भोजपुरी और मैथिली हिंदी है और विद्यापति कबीर जैसी सूर तुलसी भारतेंदु निराला और अज्ञेय एक ही विकसनशील काव्य भाषा के विविध रूपों का प्रयोग करते हुए हिंदी के कवि हैं, जबकि मीर और गालिब आधुनिक परिनिश्चित हिंदी की दृष्टि से अधिक बोधगम्य भाषा का प्रयोग करने के बावजूद हिंदी के कवि नहीं कहे जा सकते। गालिब का ऊपर उद्धृत शेर व्याकरण और शब्दावली की दृष्टि से पूरे तौर पर हिंदी में होने के बावजूद हिंदी कविता का उदाहरण नहीं माना जाता है। व्युत्पत्ति व्याकरण और बोधगम्यता के तत्व भाषिक दृष्टि से उर्दू को खड़ी बोली हिंदी से अभिन्न सिद्ध करते हैं। जातीयता के आधार पर भी उर्दू को अलग नहीं माना जा सकता। किसी सीमा तक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण और मूलतः काव्य भाषा के स्तर पर उर्दू की स्थिति हिंदी से अलग हो जाती है। भाषा की व्याकरणिक और सृजनात्मक प्रकृति से उसकी लिपि का बुनियादी संबंध यों भी नहीं होता। फिर धीरे धीरे उर्दू शायरी उत्तर नागरी लिपि में अधिकाधिक सुलभ होती जा रही है। यों इन दोनों का अंतर न बोलने का है न लिखने का। हाँ, उनकी काव्य रचना के स्वभाव में फर्क है। इस संदर्भ में एक जातीय भाषा की दो काव्य धाराओं का तुलनात्मक अध्ययन अपने में रोचक और उपयोगी है। जैसा संकेत किया गया उत्तर मध्यकालीन दरबारी और सामंती जीवन से जुड़े हिंदी रीति काव्य और उर्दू शायरी में समानता के कई बिंदु हैं, पर उर्दू की गजल में मुक्तक वृत्ति के बावजूद एक दार्शनिक रुझान है जो रीतिकालीन काव्य में नहीं मिलता। गजल एक विषय पर कहे गए शेरों का समूह है, क्रम नहीं, जो अलग अलग होकर भी अपनी अंतर्वस्तु से जुड़े हैं और एक तरह की मानसिकता बनाते हैं। रीतिकालीन मुक्तक अपने आप में स्वतः पूर्ण है और मिलकर किसी एक अंतर्वस्तु का निर्माण नहीं करते। वहाँ दार्शनिक मिजाज न होने का एक कारण यह भी है कि एक स्तर पर वे लीला पुरुषोत्तम कृष्ण का चित्रण करने का दावा करते हैं, उनका श्रृंगार अवतारवाद से जुड़ा है। कोष्टक में बानी को सार बखान्यो श्रृंगार, श्रृंगार को सार किशोर किशोरी तथा सब सुखदायक नायिका नायक जुगल अनूप राधा हरि आधार जस रस श्रृंगार स्वरूप देव, कोष्टक बंद। इसीलिए उसमें लीला का उत्सव है। उर्दू शायर का श्रृंगार विरह भाव में है। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, गालिब, और परम तत्व के निर्गुण रूप की झलक देता है, इसलिए उसकी एक दार्शनिक मुद्रा बराबर बनी रहती है जो चमत्कार को भेद कर गहरे स्तर पर बैठती है। रीति काल में लीला का पृष्ठ संख्या 61 उल्लास है और उसी युग की उर्दू शायरी में विरह का अवसाद। इसी से संबद्ध एक और स्तर पर इन दोनों धाराओं के बीच में फर्क है। उत्तर मध्यकाल में विकसित श्रेष्ठ उर्दू कविता में दार्शनिक मिजाज है। हिंदी के रीतिकाल में जहां वह अपने उत्कृष्ट रूप में है, ध्वन्यात्मकता और लय का परिपूर्ण विधान है। ब्रज भाषा को एक ओर तराशा हिंदुस्तानी संगीत के कलावंतों ने, दूसरी ओर रीतिकालीन कवियों ने। इन दोनों परंपराओं का संगम उसी समय की एक तीसरी कला चित्रकला में रागमाला अंकन के रूप में होता है। देव घनानंद पद्माकर के कवित्व सवैये लय और यति के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। संगीत में भाषा का उपयोग और भाषा में संगीत का यह ब्रज भाषा के विकास की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। यह जरूर है कि संगीत एक सीमा के बाद भाषा को परे रख देता है, जैसे कि अलाप और तराना में, यानी आरंभ और समापन में, जहाँ संगीत का शुद्धतम और श्रेष्ठतम रूप देखा जा सकता है। इस संदर्भ में भारतीय शास्त्रीय मौखिक संगीत मानवीय सृजनात्मक क्षमता की श्रेष्ठतम उपलब्धि कही जा सकती है, जैसे कि पश्चिम में यह दर्जा यूनानी ट्रेजेडी को दिया जाता है। हवा और पानी की तरह इसमें शुद्धता और प्रवाह अपने आप है, जब तक कि उसे विकृत करने का यत्न न किया जाए। इसलिए हवा और पानी की ही तरह किन्हीं नई प्रविधियों के द्वारा उसे और उन्नत नहीं बनाया जा सकता। प्रकृति और कला की सन्निकटता बिना एक दूसरे को विकृत किए हुए यहाँ आदर्श रूप में देखी जा सकती है। माना ही यह जाता है कि संगीत के मूल स्वर विविध पशु पक्षियों की ध्वनि के आधार पर विकसित हैं। तब इसकी बनावट से बहुत छेड़छाड़ इसे वैसे ही प्रदूषित कर देगी जैसे आधुनिक कल कारखानों के धुएं और शोर ने पर्यावरण को कर दिया है। हिंदुस्तानी संगीत, रीतिकालीन काव्य और रागमाला अंकन कला के ये तीन माध्यम साथ साथ एक युग में अपना उत्कर्ष पाते हैं तो यह आकस्मिक नहीं है। जैसा पहले संकेत किया गया, इन विधाओं का अपना गहरा रचनात्मक रिश्ता है। रागमाला चित्रांकन पद्धति पर कार्य करने वाले विद्वानों ने परिलक्षित किया है कि 16वीं से लेकर 19वीं तक की 4 शताब्दियों के दौरान और दक्षिण से लेकर पंजाब तथा मारवाड़ से लेकर बंगाल तक सहस्त्रों मील के विस्तार में प्रतिष्ठित चित्रकारों ने कोई 40 रागों में से किसी भी एक राग के अत्यंत समरूप चित्र बार बार बनाए थे। क्लास एबेलिंग। रागों के चित्रण में उस समय जब संचार साधन एकदम अविकसित थे, यह समरूपता कैसे संभव हुई होगी, इस प्रश्न पर कला आलोचक बार बार विचार करते रहे हैं। एक मान्यता यह है कि ध्वनियों के अलग अलग अपने निश्चित आकार होते हैं, जिससे एक तरह की स्वर लहरी कान में पड़ने से एक ही प्रकार की आकृतियां मन में उभरती हैं। इतना तो व्यवहारिक रूप में हम भी लक्षित कर सकते हैं कि समूह गान या वाद्य वृंद को निर्देशित करते समय उसके संचालक जब लिखित स्वर लिपियों का प्रयोग नहीं करते होते, उस समय अपने हाथ के चालन से ही मानव संगीत की आकृतियों का निर्माण करते हैं। संगीत की धुन और संचालक द्वारा हाथ के चालन से निर्मित आकृतियों में अद्भुत साम्य होता है। तो रागमाला चित्रों के निर्माण प्रक्रिया के पीछे यह ध्वनियों की आकृति महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। फिर इन चित्रों के साथ साथ बहुत बार रीतिकालीन कविताएं अलंकृत लिखावट में दी गई हैं। एबेलिंग का मानना है कि इस शैली के प्रथम चित्रकारों ने चित्रांकन के लिए सुराग रागमाला संबंधी कविता में वर्णित बिंबों से प्राप्त किए होंगे। बहरहाल अपने तीनों अर्थों में वर्ण का, स्वर, सुर और रंग का विलक्षण संगम रागमाला चित्रांकन में संभव हुआ है, जिससे रीतिकालीन कविता में लय संबंधी प्रबल पृष्ठ संख्या 62 पक्षधरता आसानी से समझी जा सकती है। संगीत के सानिध्य में रीतिकालीन कवि अपने कवित्व सवैयों की बंदिश में, जो भक्तिकालीन पदों की भांति मूलतः गेय नहीं है, लय का विधान कैसे करता है, यह देखने की बात है। छंद के हर चरण विशेषता अंतिम में व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में अर्थ के विराम संगीतात्मक लय के एकदम समतुल्य बैठते हैं। सवैया में विशेषता पढ़ने की दृष्टि से लघु गुरु का आग्रह कठोर नहीं है। बिहारी ने छोटे से छंद दोहे में और सेनापति मति राम देव पद्माकर तथा ठाकुर ने कवित्व सवैयों में बराबर इस लय को अपने विधान के केंद्र में रखा है, जिससे रीतिकालीन कविता में तन्मयता है। उर्दू शायरी की तरह वैचारिक या दार्शनिक बेचैनी नहीं। उदाहरण के लिए कुछ छंदों के अंतिम चरण को लिया जा सकता है। नाउ सुनत ही ऑब्लिक वह गयो ऑब्लिक तनु औरे ऑब्लिक मनु और बिहारी। पानिप अमल की ऑब्लिक झलक झलकन लागी ऑब्लिक काई सी गई है ऑब्लिक लरिकाई कढ़ी अंग ते मतिराम। मेरे जान पौनो ऑब्लिक सीरी ठौर को पकरी कौनो ऑब्लिक घर एक बैठी ऑब्लिक कहूँ घामे बितवत है सेनापति। पाऊँ कहाँ हरी हाय तुम्हें ऑब्लिक धरनी में धसों ऑब्लिक की अकाश ही चीरों घनानंद। भरी रही ऑब्लिक भनक भनक ऑब्लिक तार ताननी की ऑब्लिक तनक तनक ऑब्लिक तामे ऑब्लिक झनक चूरीन की देव। इन चरणों की बनावट में आसानी से देखा जा सकता है कि लगाए हुए विभाजक चिन्ह वाक्य विधान को जहां स्पष्ट करते हैं, वहीं छंद की यति के सूचक भी हैं। अंतिम उदाहरण में तो छंद में वर्णित रस की पूरी लय ही जैसे अंत तक मूर्तिमान हो गई है। अनुप्रास और यमक अपने अच्छे रूप में इस लय को समृद्ध करते हैं। अपने घटिया इस्तेमाल में वे भले चमत्कार और कौतुक के उपकारक हों। रीतिकालीन कवित्व सवैये की बनावट में यह लय शास्त्रीय संगीत के समतुल्य उत्तरोत्तर सघन होती जाती है और अंतिम पंक्ति में उसकी सहज निष्पत्ति प्रस्तुत होती है। रीतिकालीन काव्य में संगीत का यह गुण उसमें तन्मयता और अनुभूति प्रवणता को बढ़ाता है, कुछ वैसे ही जैसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय मौखिक संगीत विचार को परे रखकर अपनी अनुभव सघनता में स्पृहणीय है, पर स्वयं संगीत के समक्ष यह सारा चित्रण और कविता अपर्याप्त लगने लगते हैं। हवा और पानी की तरह उसका भी कोई स्थानापन्न नहीं। भाषा एक समय है जबकि संगीत के स्वर समुद्र से निकाले मोती की तरह प्राकृतिक हैं, और संगीत के विस्तृत विधान में इस नैसर्गिक उपकरण से अधिक खास कुछ लगता नहीं। संगीत की ही यह क्षमता है कि वह भाषा तथा चिंतन को अस्थायी तौर पर स्थगित कर देता है उसी अवधि में उन्हें नवीकृत और समृद्ध बनाता हुआ। हिंदी रीति काव्य के विकास में कई चिंतन और कला धाराओं का योगदान देखा जा सकता है। संस्कृत का काव्य शास्त्र प्राकृत अपभ्रंश की श्रृंगारी और मुक्तक परंपरा, मध्यकालीन हिंदी कृष्ण भक्ति काव्य और उत्तर भारत के मंदिरों तथा दरबारों में विकसित शास्त्रीय संगीत, इन सबका रचनात्मक संपर्क रीति काव्य में हुआ। तब यह स्वाभाविक था कि इन कवियों के लिए मौलिकता का एक ही क्षेत्र सूक्ष्म परिकल्पना का रह जाए। आश्रयदाता की प्रशंसा तथा श्रृंगार वर्णन के समय बहुत बार यह परिकल्पना अति रंजना के आवेश में ऊहा, पृष्ठ संख्या 63, का रूप धारण कर लेती है। ऐसे पद्यों का अब दस्तावेजी महत्व है, पर बहुत जगहों पर यह परिकल्पना आत्मीय अनुभूति में डूबकर अनुपम काव्य लय की सृष्टि करती है, जो रीति काव्य की श्रेष्ठतम उपलब्धि है। पंडितों के अलावा ऐसे छंद ग्रामीण अंचलों तक के मध्य वित्त परिवारों में लोगों को कंठस्थ रहे हैं। हजारा जैसे संकलन इसके कारण और प्रमाण हैं। उनके गृहस्थ जीवन में सास जिठानी, देवर देवरानी, ननद नंदोई के अनुशासन और आकर्षण बराबर बने रहे। रीतिकालीन कवि शास्त्रकार या कि आचार्य कवि थे यह सुविदित है। इस पर भी आलोचक एक मत है कि इनकी मौलिकता काव्य पक्ष में है, आचार्यत्व में नहीं, और हिंदी कविता के इतिहास के लिए यह अच्छा ही है, क्योंकि यदि आचार्यत्व को मौलिकता होती तो फिर इन्हें हिंदी आलोचना और काव्य शास्त्र के संदर्भ में देखा परखा जाता, कविता के संदर्भ में नहीं। आलोचना के लिए संवेदना कवि की हो पर वृत्ति अध्यापक की, तो व्यक्तित्व की संश्लिष्टता अधिक स्मरणीय होगी, जैसी आधुनिक साहित्य चिंतन के क्षेत्र में सर्वत्र दृष्टव्य है। रिचर्ड्स एम्पसन, ब्रैडले, रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐसे व्यक्तित्व के श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। हिंदी रीति काव्य परंपरा का आरंभ कहाँ से होता है, इस संबंध में कई दृष्टिकोण उपस्थित किए गए हैं। कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम, रचनाकाल 1541 ईस्वी का नाम पहले आता है। रचनाकार व्यक्तित्व की समृद्धि की दृष्टि से केशवदास का 1555 से 1617 ईस्वी और आगे अखंड परंपरा चलने के विचार से चिंतामणि का रचनाकाल 1643 ईस्वी के आसपास। रीति काव्य धारा अधिक सहज और व्यवस्थित रूप से चलने के कारण यहाँ प्रवर्तन की बात कुछ अधिक स्पष्ट रूप से उठती है। कई काव्य शास्त्रीय पक्षों और प्रबंध तथा मुक्तक शैलियों का प्रतिनिधित्व करने के कारण भक्ति से रीति काव्य धारा में रूपांतरण का श्रेय अधिकतर केशवदास को दिया जाता है। वे कालक्रम से भक्ति काल में हैं, पर प्रवृत्ति की दृष्टि से रीति काल में। वस्तुतः मध्यकालीन काव्य में केशवदास की स्थिति बहुत कुछ उनके पांडित्य और तज्जन्य आतंक के कारण है। काव्य रचना के स्तर पर उनका सफल कृतित्व कम है। रीति काव्य की कमियां यहाँ अधिक हैं, उपलब्धियां कम। इसका प्रमाण उनकी काव्य भाषा का रूप है, जो व्यवहारिक व्यवस्था और सृजनात्मक क्षमता दोनों दृष्टियों से अस्त व्यस्त और उखड़ा पुखड़ा है। कवि की प्रसिद्ध कृति रामचंद्र का छंदों का एक अजायब घर है, जहाँ छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह और जीवंतता उत्पन्न नहीं करता, वरन उसे नष्ट कर देता है। बहु छंद की जो प्रतिज्ञा केशवदास ने की है वह काव्य के लिए नहीं, कौतुक के लिए है। इन छंदों में काव्य भाषा ऐसे सांचों में कस गई लगती है जिनसे कोई रूपाकार ग्रहण करके वह निकल नहीं पाती। मध्यकालीन काव्य भाषा के रूप में अब तक विकसित और निखरा हुआ ब्रज भाषा का रूप केशव की रचनाओं में तरह तरह से विकृत हुआ है। कवि ने रामचंद्रिका में छंद वैविध्य के लिए जितना यत्न किया है, भाषा की लय उतनी ही अपेक्षित हुई है। जबकि हम देख चुके हैं कि रीति काव्य के विकास में लय का भाषा के साथ विलक्षण संयोग और सहयोग रहा है। उदाहरण के लिए दूसरे प्रकाश का पहला छंद लें, दशरथ की महिमाशाली राजसभा का वर्णन है। आवत जाता राज के लोगा, मूरति धारी मानहु भोगा, पृष्ठ संख्या 64। यहाँ जात, लोग और भोग के प्रचलित रूपों को छंद के आग्रह के कारण विकृत किया गया है, अर्थात पूरे छंद के 9 शब्दों में से 3 विकृत हैं। फिर छोटे छंद के चरण होने के कारण उनमें वाक्य कट गया है और भाषा की लय समाप्त हो गई है। वर्णन की प्रक्रिया यूं भी विस्तार और ब्यौरे की है, अतः छोटा छंद तो वर्णन के लिए बिल्कुल ही अनुपयुक्त है। दशरथ की राजसभा का ऐश्वर्य इन छंदों में बंधी भाषा से व्यंजित नहीं होता। छंदों का शास्त्रीय ज्ञान केशवदास को चाहे जितना रहा हो, पर भाषा की लय पर उनका कोई अधिकार नहीं जान पड़ता। लय के संबंध में कवि की असावधानी उसके शब्दों के चुनाव से भी प्रकट होती है। रामचंद्रिका में तत्सम शब्दावली के साथ प्रचलित शब्दों के विकृत रूप एक विचित्र और असुखद संयोग उपस्थित करते हैं। सरयू नदी का वर्णन है, अति निपट कुटिल गति यद्यपि आप, तौ दत्त शुद्ध गति छुवत आप, कछु आपुन अध अध गति चलंती, फल पतितन कह उरध फलंती। अति कुटिल गति दत्त शुद्ध जैसे तत्समों के साथ चलंती या फलंती जैसे विकृत रूप भाषा के स्वरूप को एक रस नहीं होने देते। संस्कृत अपभ्रंश और हिंदी भाषा के ये तीनों स्तर जैसे एक साथ मिला दिए गए हों, देती है के लिए दत्त शब्द का प्रयोग तो किसी भी नियम से उचित नहीं ठहरता। केशवदास की बहुत चर्चित दुर्बोधता भावों की दुर्बोधता के कारण नहीं भाषा की अव्यवस्था के कारण है। शास्त्र को लेकर आचार्यत्व का दंभ उनमें है, अनुभव के प्रति कवि की विनम्रता नहीं। बिहारी में रीतिकालीन भंगिमाएं बहुत अच्छी तरह देखी जा सकती हैं। शब्दों की तराश पर विशेष बल है जिसे दो रूपों में कवि ने अब बनाया है। कुछ शब्दों का ध्वन्यात्मक अनुकूलन करके प्रिय का जगह जगह प्योर रूप द्रष्टव्य है जो केंद्रीय ब्रजभाषा की ओकारांत प्रकृति के अनुकूल है, और कुछ शब्दों में हल्के से प्रत्यय लगाकर सत्रोहे या सवादिलु जैसे विशेषण। बिहारी ने इन शब्द रूपों को नया संस्कार दिया है। ध्वन्यात्मक और व्याकरणिक दोनों स्तरों पर कवि की भाषिक तराश रीतिकालीन मनोवृत्ति और मुगलकालीन बारीक पसंदी के समानांतर चलती है। इस संदर्भ में बिहारी को रीतिकालीन काव्य भाषा का प्रतिनिधि शिष्टा कहा जा सकता है। क्षेत्रीय दृष्टि से इसका एक कारण यह है कि बिहारी ने कुछ बुंदेली शब्द रूपों के साथ अपने काव्य में मथुरा आगरा की और रूप प्रधान केंद्रीय ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। भाषा और संस्कृति का अविच्छिन्न संबंध है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि बिहारी के श्रृंगार वर्णनों में ब्रज क्षेत्र की तत्कालीन संस्कृति का केंद्रीय रूप प्रतिफलित हो। बिहारी की नायिका शास्त्रीय ग्रंथों से बाहर अपनी सज्जा बोली बानी और चेष्टाओं में ठेठ ब्रज की युवती है। राधा कृष्ण की भक्ति और श्रृंगार की जीवंत परंपरा बिहारी के माथुर चतुर्वेदी संस्कार के साथ बड़े सहज भाव से मिल गई है, जिसके फलस्वरूप उनके काव्य में एक ओर काव्य शास्त्रीय अभिप्रायों की श्रृंखला है और दूसरी ओर ब्रज की स्वच्छंद और रसमय जीवन पद्धति है। स्वच्छंद और उन्मुक्त जीवन प्रेम के विविध रूप और साथ ही उपपति तथा जारज संतानों के संकेतों से युक्त बिहारी का संसार उनकी भाषा में पूरी तरह से रच गया है। ब्रज की लंबी साहित्यिक परंपरा के बीच बिहारी की रचना उनकी अपनी ही उक्ति का स्मरण कराती है। पृष्ठ संख्या 65। अनियारे दीर्घ द्रिगुण किति न तरुणी समान, वह चितवनी और कछु जिही बस होत सुजान। कविता की भाषा में कैसे भी अप्रस्तुत विधान की दृष्टि से संज्ञा शब्दों का महत्व निर्विवाद है, पर अन्य तरह के शब्दों के माध्यम से भी अभिव्यक्ति की बहुत सी भंगिमाएं संभव होती हैं। छोटे और निर्विकार से दिखने वाले अव्यय शब्द पूरे के पूरे वाक्य में अर्थ को कैसे विकसित करते हैं यह बिहारी की काव्य भाषा में देखा जा सकता है। यहाँ उर्दू शायरी का भाषिक विधान स्मरण आता है, जहाँ ही भी या गोया जैसे छोटे शब्द समूचे अर्थ में गुणात्मक अंतर उपस्थित कर देते हैं। हिंदी कविता में रीति युगिन काव्य से इन अकिंचन अव्यय शब्दों की सृजनात्मक पहचान बढ़ी है। आधुनिक खड़ी बोली कविता के आरंभिक युग में पुनः अव्ययों की अंत्यज की तरह मानकर उन्हें बेगार में डाल दिया गया। मैथिली शरण गुप्त की कविता अव्यय के अपव्यय का बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर खड़ी बोली काव्य भाषा एक स्तर पर मैथिली शरण गुप्त के बाद से लेकर नई कविता तक क्रमशः अव्ययों के उत्तर उत्तर सार्थक प्रयोग का इतिहास कही जा सकती है। बिहारी में अव्यय ब्रज की समीकरण प्रिय प्रकृति के कारण बहुत बार संज्ञा शब्द रूपों से संश्लिष्ट रहते हैं। औरे में ए कोष्ठक में ही, छाहो में अ कोष्ठक में भी, न केवल इन शब्द रूपों को वरन पूरे के पूरे वाक्य के अर्थ को रूपांतरित कर देते हैं। इसी प्रकार से ई और उ के प्रयोग हैं। कुछ उदाहरणों से ये और स्पष्ट होंगे। औरे डैश ए बराबर ही, राति रमी रति देती करी, औरे प्रभा प्रभात, वह चितवनी औरे कछु जिहि बस होत सुजान। अ डैश कोष्टक में भी, देखी दुपहर जेठ की, छाहो चाहती छाह, वाको अति अनखाहटो मुस्काहट बिनु नाही। उ कोष्टक में भी, लपट बुझावत विरह की, क कपट भरेऊ आई। ई कोष्ठक में ही इन दुखिया अखियान को सुख सिरज्यो नाही। ही हु और भी जैसे सामान्य अव्यय रूपों की तुलना में उनके ये ध्वन्यात्मक रूपांतर ए ओ उ ई प्रत्यय की तरह प्रयुक्त होकर अर्थ को और सघन बनाते हैं। इन दुखिया अखियान को सुख सिरज्यो नाही में मानव विरहणी की सारी वेदना और व्यवस्था अव्यय प्रत्यय ई में संकेंद्रित हो गई है। दूसरी तरह का उदाहरण वह प्रसिद्ध दोहा है, नित प्रति पुण्योई रहे आनन ओप उजास। यहाँ भी अतिशोक्ति का स्रोत ई अव्यय है। परवर्ती उर्दू शायरी अपनी भाषिक चुस्ती के लिए विख्यात है। अव्ययों के सार्थक प्रयोग की दृष्टि से गालिब की कुछ पंक्तियाँ उदाहरण रूप में प्रस्तुत हैं। रीति काव्य और उर्दू शायरी की तुलना का यह एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। जिंदगी यो भी गुजर ही जाती, क्यों तिरा रहा गुजर याद आया। पृष्ठ संख्या 66। रेखते के तुम्ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के प्रधान शब्दों को इन परसर्ग रिपीट उपसर्ग प्रत्यय अव्ययों की सहायता से परिमार्जित संशोधित करना इस रूप में कि ये उपसर्ग प्रत्यय अव्यय अपना गुणात्मक महत्व विकसित कर लें, आलोचना के मुहावरे में तराश कहलाएगा, जो हिंदी क्षेत्र की उत्तर मध्यकालीन काव्य भाषा को एक खास भंगिमा देता है। रीति काल में ब्रज भाषा की तराश के लिए बिहारी ठीक ही विख्यात है। बिहारी का विवेचन करते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए मुक्तक रूप में दोहा जैसे छोटे छंद को चुना है, जो फिर उर्दू कविता के शेर से तुलनीय है। गजल का संपूर्ण विधान स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए इन शेरों से बनता है, जो कथा वस्तु के स्तर पर एक दूसरे से संबद्ध होते हुए भी अपनी भाषिक संरचना में अलग हैं। मध्यकाल में दोहे और शेर का मुक्तक रूप दरबारी परंपरा के काव्य से जुड़ा हुआ है। जिस भाषिक तराश का अभी उल्लेख किया गया है, उसकी रचनात्मक आवश्यकता बहुत कुछ मुक्तक शैली की इन छोटे छंदों के चुनाव से भी संबद्ध है। उपसर्ग प्रत्यय अथवा अव्यय जैसे छोटे शब्द या शब्दांशों का महत्व इस संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है। इन कवियों को छोटे से छोटे शब्द का सही और पूरा सार्थक उपयोग कर लेना था। वे सिर्फ चरण पूर्ति के लिए इन अव्ययों का अपव्यय नहीं कर सकते थे। दोहा तो रीति काल के ही कवित्व और सवैये की तुलना में बहुत छोटा छंद है। रीतिकालीन कवियों में बिहारी और देव के बीच श्रेष्ठतर रचनाकार कौन है, इस पुराने विवाद में पड़े बिना भी यह जरूर कहा जा सकता है कि रीतिकालीन मनोवृत्ति का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व बिहारी के काव्य में मिलता है। रीतिकालीन मनोवृत्ति का संबंध आत्यंतिक रूप में श्रृंगार से नहीं है। इसका अच्छा उदाहरण भूषण का काव्य प्रस्तुत करता है। यहाँ भक्ति काल को लांघ कर रीति काल मानो वीर गाथा काल से संपर्कित होता दिखाई देता है। वीर परंपरा का काव्य जिस तरह रीतिकालीन शैली में ढाला है, उससे इतिहास में साहित्यिक युगों की परिकल्पना अच्छी तरह प्रमाणित होती है। एक युग में एक ही केंद्रीय मनोवृत्ति बराबर सक्रिय होती दिखाई देती है। भूषण और मतिराम सगे भाई कहे जाते हैं, यद्यपि उनकी काव्य प्रवृत्तियां एक दूसरे से अलग है। एक की रचना वीर रस की है, जिससे उस युग के अन्य प्रसिद्ध कवियों में उसकी पहचान अलग बनती है। दूसरी ओर मतिराम है, जिनमें श्रृंगार की सूक्ष्म परिकल्पना एकदम विशिष्ट है। दोनों रीति काल की विभूति हैं तथा दोनों में अलंकार विवेचन की समान प्रवृत्ति है। यों वे न केवल वंश परंपरा में भाई वरन रचना परंपरा में भी समगोत्रीय हैं। यद्यपि वर्ण विषय की दृष्टि से वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में हैं। भूषण के काव्य में एक ओर अलंकारों का प्रयत्न पूर्वक नियोजन है और दूसरी ओर वीर रस की व्यंजना के लिए द्वित्व व्यंजन मूर्धन्य ध्वनियों और संयुक्त ध्वनियों को खोलकर प्रयुक्त करने की प्रवृत्ति व्यापक रूप से मिलती है। सामान्यतः संयुक्त ध्वनियां वीर रस की व्यंजना के अनुकूल मानी जाती हैं, पर तीखन या रकत जैसे जानबूझकर विकृत किए गए प्रयोगों में कवि मानो एक एक ध्वनि पर अलग अलग बल देकर समूचे भाव को अधिकाधिक चित्रोपम बनाता जान पड़ता है। वीर रस के संदर्भ में भूषण द्वारा अमृत ध्वनि का प्रयोग इन परुष ध्वन्यात्मक वृत्तियों का एक संश्लिष्ट रूप है, जो सामान्य रीतिकालीन परिदृश्य पर अपनी अलग स्थिति रखता है। भूषण के चरित नायकों में शिवाजी सबसे ऊपर हैं। शिवराज की वीरता का गान करके कवि ने रीतिकालीन संवेदना और हिंदी भाषा के संस्कार को क्षेत्रीय दृष्टि से भी विस्तार दिया है। मध्य देशीय कवि का यह अतिरिक्त दायित्व बोध है। लक्षण ग्रंथों की परंपरा से पूरी तरह संबद्ध रहने पर भी मतिराम का काव्य वैशिष्ट जितना प्रगल्भ है उतना ही संवेदनशील। उनकी काव्य भाषा रीतिकालीन संदर्भ में प्रगल्भता और मित कथन का संधि बिंदु है। वर्णन की अतिरंजना रीतिकाल का औसत मिजाज कहा जा सकता है। दूसरी ओर उसी युग में घनानंद जैसा कवि भी हुआ जो अपने मित कथन के लिए विख्यात है। मतिराम में रीतिकाल की सामान्य प्रवृत्ति और उसके अपवाद दोनों की एक साथ अवस्थिति मिलती है, इसलिए उनके मानवीय प्रणय प्रसंगों के वर्णन अकुंठ हैं। मध्या का जो उदाहरण कवि ने दिया है, केली भवन की देहरी खरी बाल छवि नौल, काम कलित हिय को लहे लाज कलित दृग कौल, कुछ ऐसा ही अर्थ का द्वंद्वात्मक रूप उसकी भाषा में मिलता है। प्रगल्भता और मित कथन का यह दोहरा रूप श्रृंगारिक वर्णन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। एक ओर मध्या अधीरा की यह तीखी उक्ति है, वलय पीठ ही तरीवन भुजन उर कुछ कुंकुम छाप, तीते जाहु मन भावते जिते बिकाने आप। दूसरी ओर निर्मल अंग दीप्ति का नाजुक वर्णन है, बसन हरयो पिय सुरत में तियतन ज्योति समीप, केली भवन में रातिहु भय झोस के दीप। यहाँ मानव शरीर को उत्सव भाव में अंकित किया गया है, जहाँ जीवन का उल्लास है, पर जो थोड़े ही अति कथन में अश्लीलता की खंड दृष्टि में बदल सकता था। उल्लास और अश्लीलता का सूक्ष्म पर महत्वपूर्ण अंतर भाषिक स्तर पर है। बिंब रचना के क्षेत्र में मतिराम के कुछ प्रयोग बड़े मौलिक और ताजगी लिए हुए हैं। वह संधि का वर्णन एक रीतिकालीन रूढ़ी कहा जा सकता है। इस रूढ़ी को मौलिक बिंब में संक्रमित कर देना बड़ी रचना क्षमता की अपेक्षा रखता है। ज्ञात यौवन का उदाहरण मतिराम ने इस प्रकार दिया है, कानन लो लागे मुस्कान प्रेम पागे लौने, लाज भरे लागे लोल लोचन अनंग ते, भारु धरी भुजनी दुलावती चलती मंद, औरे ओप उलहत उरज उतंग ते, मतिराम जोबन पवन की झकोर आए, बढ़िके सरस रस तरल तरंग ते, पानिप अमल की झलक झलकन लागी, काई सी गई है लरिकाई कढ़ी अंग ते। सांग रूप पर आधारित होते हुए भी अपनी अंतिम पंक्ति में यह बिंब इस तरह संपन्न होता है कि सांग रूपक के ब्योरों पर ध्यान न जाकर सौंदर्य वर्णन की अनेक प्रच्छन्नतहें खुल जाती हैं। प्रस्तुत कवित्त के अंतिम चरण में प्रयुक्त श्लेष और यमक भी भाषा प्रयोग में उभरते नहीं। पृष्ठ संख्या 68, वर्ण समूचे बिंब में समरस हो गए हैं। रीतिकालीन रूढ़ अलंकरण को अतिक्रमित कर जाने में मतिराम के इस बिंब की प्रभावशालिता अच्छी तरह देखी जा सकती है। इसी प्रकार मतिराम की बिंब रचना कहीं कहीं उस स्तर का स्पर्श करती है जहां वर्णन का प्रयोग बिंब की तरह है, जो आधुनिक युग में नई कविता की एक विशिष्ट भाषा सिद्धि मानी जाती है। मतिराम के प्रसिद्ध सवैये का वैशिष्ट्य इसी प्रक्रिया में समझा जा सकता है, वह बनमाल लिए लगिए अरुह है मुरली अधरा रस लीजे। वर्णन की दृष्टि से वनमाल का हृदय से और मुरली का अधरों से लगा रहना यथार्थ क्रियाएं हैं, किंतु इन्हीं के बीच से प्रणय प्रसंग का एक अकुंठ पर सूक्ष्म बिंब विकसित होता है। अनुभव की तन्मयता में इसका ध्यान ही नहीं रह जाता कि यह परकिया का उदाहरण है। यद्यपि सवैये के बाद वाला दोहा तो संवेदना के स्तर पर बड़ा अटपटा लगता है, कंत चौक सीमंत की बैठी गांठ ही जुराए, पेख ही परोसनी कौ प्रिया घूंघट में मुस्काए। यह अच्छा है कि रीतिकालीन कवियों के छंद उनके शास्त्रीय विवेचन क्रम के बाहर स्वतंत्र रूप से सामान्य जन के स्मृति में सुरक्षित हुए हैं। मुक्तक काव्य रचना यूं दरबारी वातावरण की दृष्टि से तो उपयुक्त है ही, कवित्व प्रेमी जनता की सुरुचि के संदर्भ में भी अनुकूल सिद्ध हुई है। ज्ञात यौवना के अंकन में वर्षा के बाद काई को हटाकर जल की निर्मल कांति का झलक मारना, इस बिंब का उल्लेख ऊपर हुआ है। प्राकृतिक जीवन की ताजगी का ऐसा ही रूप एक अन्य बिंब में भी मिलता है, पिय आयो नव बाल तन बाढ़ो हरस विलास, प्रथम बारी बूंदन उठे ज्यों बसमती सुभाष। पुरुष और नारी के लिए क्रमशः वर्षा के बादल और पृथ्वी के आदिम बिंब का यहाँ एक नई कुशलता के साथ प्रयोग हुआ है। पृथ्वी की सौंधि गंध जैसे समूचे बिंब में पर्याप्त हो गई हो। कवित्त रत्नाकर के रचयिता सेनापति की कविता कुछ रीतिकालीन प्रवृत्तियों को अच्छे ढंग से विवृत करती है। रीतिकालीन कवि एक खास ढंग से छंद की लय और गति की साज संभाल पर जोर देते हैं, इसलिए यह ठीक ही है कि इस प्रक्रिया में वे अनुप्रास, यमक और इश्लेष जैसे अलंकारों की अधिक सहायता लें। पर बहुत बार नाच सौंदर्य को चरम मूल्य मानकर इन कवियों ने रचना की और ऐसी स्थिति में बहुत बार कविता ध्वनियों का खिलवाड़ होकर रह गई, और फिर कम समर्थ कवियों में तो यह खिलवाड़ ही प्रधान हो गई। सेनापति ने श्लेष तथा यमक का सजग और घोषित रूप में प्रयोग किया है, इसे वे अपनी काव्य रचना का वैशिष्ट्य मानते हैं। इस संबंध में गर्वोक्ति करते हुए उन्होंने कहा है, सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई, जाकी द्वय अर्थ कविताई निर्वाह की। सेनापति के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि श्लेष का प्रयोग सामान्य काव्य भाषा से एक रस न होकर उसमें ऊपर से जड़ा हुआ चमकता दिखाई देता है। अतः इस बात की संभावना अधिक है कि श्लेष कविता में अभिव्यक्ति के प्रवाह को भंग करे बजाय इसके कि पृष्ठ संख्या 69 उसे सघन करे। कविता के लंबे इतिहास में श्लेष के सूक्ष्म प्रयोग भी मिलते हैं, पर उनकी संख्या इतनी विरल है कि श्लेष का संबंध चमत्कार से अधिक जुड़ गया है, भाषा की सृजनात्मक क्षमता से उतना नहीं। इसका एक रोचक प्रमाण यह है कि स्वयं सेनापति के ऋतु वर्णन के प्रसिद्ध छंद वे हैं जिनमें श्लेष का प्रयोग नहीं। यह स्मरणीय है कि सेनापति उन विशिष्ट कवियों में हैं जिन्होंने ऋतु वर्णन को एकांतिक रूप से अपनी कविता का उपजीव्य बनाया है। ग्रीष्म वर्णन से संबद्ध कवि का प्रख्यात छंद है, वृष को तरणी तेज सहसो किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है, तचत धरणि जग जरत झरणि सिरी, छाह को पकरी पंथ पंच बिरमत है। इस कवित्त छंद में लघु और दीर्घ ध्वनियों का क्रम एक खास ढंग से रखा गया है। सेनापति अपने कवितों की बंदिशों के लिए प्रसिद्ध हैं, जिससे ग्रीष्म ऋतु का वातावरण आप से आप बनता है। लघु स्वरों में गर्मी की दोपहरी का सन्नाटा है और दीर्घ ध्वनियों में उसकी विकरालता। ये दोनों स्थितियां एक साथ भाषा की लय से जुड़ी हुई हैं। इसकी तुलना में ग्रीष्म वर्षा के श्लिष्ट वर्णन में भाषा की कोई लय नहीं बनती, केवल कौतुकपूर्ण वर्णन है। छंद की आरंभिक पंक्ति है, देखें छिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। यहाँ जले हैं के दो अर्थ हुए, जल ही जल है और जलता है। पहले प्रयोग में जले शब्द संज्ञा है, दूसरे में क्रिया। इस दृष्टि से ही दोनों प्रयोगों की लय अलग अलग हो गई, भंग पद यमक की तरह। दाता और सूम के एक साथ वर्णन में सभंग श्लेष का उदाहरण दृष्टव्य है, नाही नाही करे थोरी मांगे सब दैन कहें। यहाँ श्लेष का मूलाधार पंक्ति का पहला अंश है, नाही नाही करें। दोनों अर्थ लेने के लिए स्पष्ट ही इस अंश को अलग अलग आघात के साथ पढ़ना होगा, और तब लय का प्रवाह एक रूप होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे श्लिष्ट प्रसंगों में काव्य भाषा के महत्वपूर्ण तत्व लय का निर्वाह प्रकृत्या बाधित होता है। जहाँ तक अर्थ का संबंध है, श्लेष का अर्थ अधिकतर अभिधेयार्थ होगा। कवित्त रत्नाकर के संपादनकर्ता उमा शंकर शुक्ल की टिप्पणी इस संदर्भ में दृष्टव्य है, कवित्त रत्नाकर की भाषा में अभिधेयार्थ ही प्रधान है। श्लिष्ट कविता के दो अर्थ होते हैं, किंतु वे दोनों अर्थ वाच्यार्थ ही रहते हैं, अतएव वहाँ भी अभिधा ही मानी जाएगी। पृष्ठ 53। वस्तुतः मध्यकालीन श्लेष अथवा यमक की अर्थ शक्ति के संदर्भ में सबसे बड़ी सीमा यही है कि वहाँ श्लेष के दोनों या कभी कभी उससे अधिक अर्थ एक दूसरे से टकराकर उन्हें गहरा और संश्लिष्ट नहीं बनाते, बल्कि एक ही छंद में एक दूसरे से अलग और असंबद्ध रहकर कवि की चतुराई या कौशल को प्रदर्शित करते हैं। दाता और सूम या ग्रीष्म और वर्षा अथवा विष्णु, लाल सूर्य तथा रात्रि साथ साथ वर्णित कर देना भाषा के सामान्य धरातल पर कवि कौशल हो सकता है, पर यह वर्णन भाषिक समरसता और प्रवाह तथा अनुभूति के स्तर से बहुत ओछा पड़ता है। यहाँ भाषा अनुभूति का रूप नहीं, खिलवाड़ का माध्यम भर है। रीति काव्य का एक बड़ा अंश जिसका उदाहरण प्रस्तुत करता जान पड़ता है, इसलिए यह केवल संयोग नहीं कि सेनापति के ऋतु वर्णन के प्राय सभी प्रसिद्ध हैं और अच्छे छंद श्लेष या पृष्ठ संख्या 70 यमक के आश्रित नहीं है। देव को सामान्यतः रीति काल का श्रेष्ठतम रचनाकार माना गया है। हिंदी आलोचना में बिहारी और देव या देव और बिहारी का मूल्यांकन बहुत कुछ तुलनात्मक रूप में होता रहा है और इस अनवरत तुलना का औचित्य काफी सीमा तक समझा जा सकता है। दोनों काव्यों की काव्य भाषा परिनिश्चित ब्रज भाषा है और उसके साथ दोनों का पूरा तादात्म्य है, पर इस प्रसंग में यह परिलक्षित किया जा सकता है कि ब्रज भाषा के नाद सौंदर्य की परख देव में अपेक्षया अधिक है। बिहारी में भाषिक तराश और श्रृंगारिक भाव का वैविध्य है, पर दोहे के विधान में उन्हें वह सूक्ष्म लय सुलभ नहीं जो देव अपने कवित्व और सवैयों में विकसित करते हैं और जो इसलिए कालांतर में रीति काल के प्रतिनिधि छंद बन जाते हैं। देव के काव्य में अनुप्रास और यमक सर्वत्र तो नहीं, पर अधिकतर अलंकार की ऊपरी सजावट के स्तर से गहरे उतरकर भाषिक विधान का अंग बन गए हैं। देव की यह ध्वनि संवेदनशीलता समूचे रीति काल में अप्रतिम है। इसका सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य यह है कि कवि का अनुप्रास विधान अपने अच्छे छंदों में या कवित्व या सवैय छंद की गति और लय के अनुकूल चलता है। देव के वृंदावन विषयक प्रसिद्ध छंद का वैशिष्ट्य इस ध्वन्यात्मक विधान में ही है। हि ब्रज वृंदावन मोही में बसती सदा जमुना तरंग श्याम रंग अवलीन की देव बेई सुंदर सघन बन देखियत कुंजन में सुनियत गुंजन अलीन की बंसी बट तट नट नागर नचत मुँह में रास के बिलास की मधुर धुनि बीन की भरी रही भनक भनक ताल तान निकी तनक तनक तामे झनक चुरीन की। यहाँ अनुप्रासिक शब्दों की स्थिति और पंक्ति के टुकड़े भरी रही भनक भनक ताल ताननी की तनक तनक तामे झनक चुरीन की कवित्व की यति और लय के अनुकूल चलते हैं। वृंदावन के रास का संगीत पूरे छंद में उमड़ने लगता है। शब्दालंकार अनुप्रास और यमक अलग से ध्यान न खींचकर भाषिक विधान में परिवर्तित हो जाते हैं। देव की काव्य भाषा में भाषिक तराश बहुत कुछ वैसी ही मिलती है जैसी बिहारी के दोहों में है, बल्कि इस प्रकार के बहुत से प्रयोग दोनों कवियों में एक जैसे हैं। एहें प्रत्यय जोड़कर बने विशेषण ललचौ हैं, रिसौ हैं, सतर विशेषण से बनी नाम धातु सतराई इय अथवा ऊ अव्यय प्रत्यय के शब्द विधान बौरिय जीयू। समय प्रवाह की व्यापक अवधारणा के लिए ब्रज भाषा का संक्षिप्त सा शब्द खन और ऐसे अन्य अनेक प्रयोग देव की भाषा के ठेठ और सहज रूप को प्रमाणित करते हैं। व्याकरणिक तराश की तुलना में जैसा संकेत किया गया ध्वन्यात्मक तराश देव की काव्य भाषा में अधिक प्रभावशाली जान पड़ता है। करुणा और श्रृंगार के प्रसंग में मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग परंपरा से निषिद्ध रहा है, पर देव की ध्वन्यात्मक तराश में मूर्धन्य ध्वनियों की कठोरता विलीन हो जाती है। संभाव्य विरह के संदर्भ में नायिका के आंसुओं का वर्णन है, ठाड़ी बड़े खन की बरसे बड़री अखियानी बड़े बड़े आंसुनी। यहाँ सवैये की इस अंतिम पंक्ति में मूर्धन्य ध्वनियों ठ ड ढ की 6 बार आवृत्ति हुई है। इन कठोर मूर्धन्य ध्वनियों का अनुशासन कवि ने अपने विशिष्ट ढंग से किया है। ठाड़ी और बड़े के साथ खन रख कर ठाड़ी बड़े खन कवि ने रहस्य और अनुनासिक ध्वनियों की सहायता से छंद के ध्वन्यात्मक वातावरण को कोमल बनाया है। इसी तरह से बड़ी विशेषण में री प्रत्यय जोड़कर फिर आगे विशेष आँख को आँखियानी बनाकर बड़री आँखियानी कवि नेत्रों पृष्ठ संख्या 71 की करुणा और विवशता को सहज भाव से व्यंजित कर देता है और इस प्रकार आंसुओं के वर्णन के बीच मूर्धन्य ध्वनियाँ जैसे पिघल जाती हैं। बिहारी में ब्रज जीवन के नटखटपन और लंगरई का चित्रण अधिक है जो उनके शब्द चयन और व्याकरणिक चुस्ती के माध्यम से संभव होता है। देव की ध्वनि संबंधी संवेदनशीलता के कारण उनके अच्छे छंदों में कोमलता और तन्मयता का सूक्ष्म वातावरण अंतर्व्याप्त है। ऊपर उद्धृत दोनों छंद जिसके बढ़िया उदाहरण हैं। देव में बिंबों का कुशल और संवेदनशील रूप समूचे रीतिकालीन काव्य में उनकी अलग पहचान करा देता है। भक्ति और रीतिकालीन कवियों में कृष्ण के श्याम वर्ण का दुर्निवार आकर्षण प्रायः एक अभिप्राय की तरह चलता है। देव ने इस आकर्षण भाव को दो अलग अलग बिंबों में अलग अलग मनस्थितियों के अनुकूल रचा है। दोनों कवि के प्रसिद्ध छंद हैं यहाँ उनके उत्तरार्ध उद्धृत हैं। लय मखतूल गुहे गहने रस मूरतिवंत श्रृंगार के चाख्यो सांवरे लाल को सांवरो रूप में नैननी में कजरा करी राख्यो आखिन में तिमिर अमावस की रैनी जिमी जम्बू रस बूंद जमुना जल तरंग में योही मन मेरो मेरे काम को न रहो माई श्याम रंग है करी समान्यो श्याम रंग में। यहाँ पहले छंद में गोपी को श्याम वर्ण इतना आकर्षक लगता है कि उसने अपने सारे श्रृंगार को श्याममय बना लिया है। अंततः श्याम के रंग का विस्तार उसके नेत्रों के काजल में संकेंद्रित हो गया है। कवि ने इस बात का संकेत भी दे दिया है कि श्रृंगार का वर्ण स्वयं श्याम है। दूसरे छंद में कृष्ण के अगाध श्याम सौंदर्य सिंधु में गोपियों की विभोरता का वर्णन है, जहाँ अक्षरों की स्याही सारी सृष्टि में परिव्याप्त हो गई है। यों एक अनुभव प्रक्रिया के दो पक्ष श्रृंगार और भक्ति का वैशिष्ट्य इन छंदों में अलग अलग बिंबों में अंकित हुआ है। यहीं दोनों की बिंब प्रक्रिया का अंतर सामने आता है। पहले छंद में श्रृंगार की आधिपत्य भावना व्यंजित हुई है श्याम रंग को अपने में समो लेने में। दूसरे छंद में भक्ति की तन्मयता और आत्मसमर्पण है श्याम सिंधु में अपने को डुबो देना है। आधिपत्य और आत्मसमर्पण रीतिकालीन काव्यानुभव के उभय पक्ष श्रृंगार और भक्ति की ये दोनों मनस्थितियाँ कवि के इन बड़े सधे हाथों से रचे बिंबों में से विकसित हुई हैं। अनुभव सघनता और लाक्षणिक अभिव्यक्ति इन दोनों दृष्टियों से रीतिकालीन कवियों में घनानंद की विशिष्ट ख्याति रही है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। विप्रलंब श्रृंगार की को अधिकतर इन्होंने लिया है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। घनानंद की प्रशस्ति में जो प्रसिद्ध सवैया मिलता है उसमें भी कवि के ब्रज भाषा प्रवीण होने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तानी के भेद को जाने। सवैये के अंत में घनानंद के संभाव्य पाठक के लिए जिन दो विशेषणों की चर्चा की गई है वे हैं भाषा प्रवीण और सुछंद। इस प्रकार घनानंद का काव्य वैशिष्ट्य उनकी मौलिक पृष्ठ संख्या 72 स्वच्छंद वृत्ति तथा सर्जनात्मक भाषा प्रयोग में से विकसित होता है और ये दोनों गुण परस्पर एक दूसरे से संबद्ध हैं। यह सही है कि आधुनिक काल में संचार के साधन अधिक त्वरित और विकसित होने पर कवियों के प्रतीक और अभिप्रायों के रूढ़ होने की संभावना अधिक हुई है, पर उत्तर मध्यकालीन ब्रजभाषा काव्य के विस्तृत रचना क्षेत्र और लंबे काल में कवियों का अप्रस्तुत विधान और शैली भी कुछ वैसे ही रूढ़ हो चली थी जैसे कि आज छायावादी काव्य के क्षितिज पर्दा आंसू और नई कविता के खपरैल नाली की चर्चा होती है। रीतिकाल में भाषा के जड़ीभूत होने का उल्लेख तत्कालीन कवि ठाकुर ने बड़ी खीज और पीड़ा के साथ किया है। सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन सीखी लीनो जस और प्रताप को कहानो है सीखी लीनो कल्प वृक्ष काम धेनु चिंतामणि सीखी लीनो मेरु और कुबेर गिरी आनो है ठाकुर कहत या की बड़ी है कठिन बात या को नहीं भूली कहूँ बांधी यत बानो है डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। रीतिकाल की बंधी बंधाई लीक पर जोड़ी गई उपमाएं या प्रशस्तियां कालांतर में कैसे अर्थ विरहित हो गई थीं इसका अच्छा संकेत इस छंद में मिलता है। आधुनिक समीक्षा की शब्दावली में ऐसे जड़ीभूत शब्द प्रयोगों को अपारदर्शी कहा जाएगा जिनमें से कुछ देखा या अनुभव नहीं किया जा सकता, जो सिर्फ पत्थर के टुकड़े या ढेले की तरह है जिन्हें उस जमाने के घटिया कवि काव्य स्वभाव में फेंका करते थे। ठाकुर ने ऐसी काव्य रचना को ढेला फेंकना कहकर बड़ा सटीक बिंब दिया है। ऐसे शब्द प्रयोग जिनसे अर्थ की प्रतीति नहीं होती सुनने या पढ़ने पर चोट ही लगती है। पहली पंक्ति में कहानों कहानी नहीं में निहित तिरस्कार बड़ा गहरा है। यहाँ इस एक शब्द के माध्यम से कवि ने अपने युग के बहुसंख्यक तुक्कड़ों के प्रति घोर व्यंग और वितृष्णा के भाव को व्यक्त कर दिया है। ऐसे रीतिकालीन परिवेश में घनानंद को स्वच्छंद भाव भूमि का कवि क्यों कहा जाता है यह प्रस्तुत संदर्भ में अच्छी तरह समझा जा सकता है। मीन मृग खंजन कमल नयन के युग में घनानंद ने भाषा की वास्तविक शक्ति को पहचानकर उसे उद्घाटित किया और इस तरह भाषा तथा अनुभव में अधिक से अधिक समरूपता विकसित की। अपने उपनाम घनानंद से लेकर छंद छंद में फैले बादल और पपीहे के एक बहुप्रचलित अप्रस्तुत विधान को लेकर उन्होंने उसे नए नए बिंबों में ढाला। कवि का प्रसिद्ध छंद कबहू वा बिसासी सुजान के आंगन मो असुवानिहु ले बरसो इसका अच्छा प्रमाण है। बादल प्रेमी के आंसुओं को लेकर प्रेमास्पद के आंगन में बरसा दे, यह परिकल्पना मेघदूत के संपूर्ण विधान में भी कुछ जोड़ देती है और यह स्थिति किसी भी भारतीय कवि के लिए स्पृहणीय हो सकती है। भाषा की अनंत अर्थ शक्ति और संभावना को पहचान कर घनानंद ने व्यंग और विनम्रता को मिलाते हुए कहा, लोग हैं लागी कवित्त बनावत मोहित और मेरे कवित्त बनावत। भाषा से अनुभव कैसे रचा जाता है और प्रशस्त होता है, इसे कवि ने भली भांति समझा था। और पृष्ठ संख्या 73, इसीलिए कहा मोहित और मेरे कवित्त बनावत। दूसरी ओर रीतिकालीन अंधानुकरण की प्रवृत्ति के प्रति ठाकुर ने बाद में चलकर अपने जिस भी तृष्णा को एक पूरे छंद में व्यक्त किया, प्रेमी कवि घनानंद उसे दो छोटे शब्दों में कह देते हैं, लोग और लागी। और लोग तो कवित्त बनाने में लगे हैं, मेरा निर्माण मेरे कवित्तों ने किया है। लोग तुलनीय पहले उद्धृत छंद में ठाकुर का प्रयोग लोगन और लागी में जो तिरस्कार भाव व्यंजित होता है वह जितना हल्का है उतना ही पैना भी। भाषा की इस गहरे स्तर पर पहचान करके कवि ने अनुभव को सूक्ष्मतम रूपों में पकड़ा है। वियोग की चरम मना स्थिति में प्रेमी का कहना है, मो गति बूझी परे तब ही जब हो घरी कहू आपते न्यारे। यहाँ स्वयं अपने से विलग होने की कल्पना जितनी सूक्ष्म है उतनी ही मार्मिक। योग की भाव भूमि को कवि ने मानो कविता के स्तर पर संभव कर दिया है। घनानंद की स्वच्छंदता, उनके बिंब विधान, भाषा प्रयोग और प्रेम की मनस्थितियों के चित्रण में सर्वत्र दिखती है। आधार भाषा के स्तर पर घनानंद की भाषा परंपरागत साहित्यिक ब्रज भाषा से अलग कुछ स्वच्छंद रूप लिए हुए है। ब्रज के एकदम ठेठ प्रयोग उनकी भाषा में अपेक्षाएं अधिक हैं। उदाहरणार्थ झरा एकदम, बनाए बिल्कुल, ओट पाए उत्पात। ऐसे प्रयोग सामान्य पाठक और सुधी व्याख्याकार दोनों के लिए कभी कभी अर्थबोध की समस्या उत्पन्न कर देते हैं। दूसरी ओर कवि के विशिष्ट प्रयोग हैं जिनसे भाषा में नई क्षमता विकसित होती है। अन उपसर्ग लगाकर अनमीच, अनपहचान, अनमोह जैसी नए ढंग की शब्द रचना घनानंद में बहुत जगह मिलती है। इस पंक्ति में अनमीच का प्रयोग बड़ा कलात्मक और सार्थक बन पड़ा है। है घन आनंद सोच महा मरिबो अनमीच बिना जिय जीबो। मन की इस दुहेली दशा का बारीक विरोधाभास अनमीच के बिना उभर नहीं सकता था। जैसा पहले संकेत किया गया, बादल और चातक तथा उनके निष्ठुर कोमल स्नेह संबंध की प्रक्रिया का बिंब घनानंद के समुचे कृतित्व में परिव्याप्त है। वियोग में उपलब्ध आनंद का यह रूप जिसे आधुनिक कवि प्रसाद ने आंसू में विविध मनस्थितियों के बीच से विकसित किया है, कवि के उपनाम घनानंद में आकर जिसे केंद्रीभूत और घनीभूत हो गया है। तुलसी ने भक्ति के संदर्भ में विशेषतः दोहावली में चातक और घन के रूप को प्रस्तुत किया है, पर उनका प्रयोग काव्य भाषा के धरातल पर उतना नहीं जितना कि व्यवहारिक दृष्टांत के रूप में है। घनानंद प्रेम और विरह की अनेक मनस्थितियों में बार बार नए सिरे से इस बिंब को रचते हैं, इसलिए पुनरावृत्ति या एक रस्ता का खतरा नहीं रह जाता, बल्कि मुक्तक रूप में लिखे गए अलग अलग छंद इस एक बिंब में आकर परस्पर जुड़ जाते हैं और फलतः इस बिंब में एक विराटता का आयाम विकसित हो जाता है। प्रेमी की कामना कि बादल उसी के आंसू लेकर उसके प्रिय के आंगन में बरसा दें, कवि की इस परिकल्पना का उल्लेख पहले किया गया है। एक अन्य छंद में तो कवि ने बड़ी कुशलता से सुजान को घनानंद और अपने को चातक बनाकर प्रेमी युगल की अद्वैतता प्रदर्शित की है। चाहे प्राण चातक सुजान घनानंद को दया कहूं काहू को परे न काम कूर सो। ऐसी ही स्थिति के लिए रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, जिस प्रकार ज्ञान की चरम सीमा ज्ञाता और ज्ञेय की एकता है, उसी प्रकार प्रेम भाव की चरम सीमा आश्रय और आलंबन की एकता है। घनानंद आचार्य शुक्ल के प्रिय कवियों में है, इसका कुछ कारण यहाँ समझ में आ जाता है। पृष्ठ संख्या 74। आश्रय और आलंबन की एकता की भाव भूमि पर आकर कवि वाचालता से मौन की ओर उन्मुख हो, यह स्वाभाविक है। घनानंद ने मौन की महिमा को पहचाना है और यह जानना रोचक लग सकता है कि जिस तरह उन्होंने मौन के भाव को एक कारुणिक रूप में नहीं वरन दार्शनिक निष्पत्ति के रूप में ग्रहण किया है, कुछ उसी प्रकार से आधुनिक कवि अज्ञेय की परवर्ती रचनाओं में मौन को अभिव्यंजना के रूप में ग्रहण किया गया है। उनकी कृति आंगन के पार द्वार की पहली कविता की मुख्य वस्तु यही है, बड़बोलेपन के समक्ष मौन की सार्थकता, और यह वस्तु विकसित होते होते संकलन की अंतिम लंबी कविता असाध्य वीणा में निष्पन्न होती है। यहाँ मौन एक ओर दार्शनिक अनुभव है और दूसरी ओर काव्य भाषा की दृष्टि से मित कथन। प्रीतिकालीन काव्य की सामान्य भंगिमा ऊहा और अतिशयोक्ति की मानी जाती है, उसके बीच घनानंद का मित कथन जितना प्रीतिकर है उतना ही विस्मयजनक भी। उनके काव्य में मौन ही की कथा और मौन में पुकार गहरे स्तर पर अंतर्व्याप्त है। व्याकरणिक स्तर पर अन उपसर्ग के नए ढंग के जैसे प्रयोग और सृजनात्मक स्तर पर मौन का महत्व घनानंद को रीतिकालीन परिवेश से आगे की स्थिति में ले जाते हैं। न उनमें रीतिकाल का मीन मृग खंजन कमल नयन है और न जस अप्रताप को कहानो है, और शायद इसीलिए उनका कृतित्व रीतिकाल की श्रेष्ठतम उपलब्धियों में से है। रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य के रूप में भिखारी दास की गणना होती है। भिखारी दास सजग और सतर्क रचनाकार हैं। उनकी स्पष्ट और घोषित महत्वाकांक्षा कविता के पक्ष में है। आगे के सुकवि रिझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है, पर यह एक करुण व्यंग है कि सजगता और सतर्कता कविता के हित में नहीं है, आचार्यत्व के हित में भले हों। इसलिए वे रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य कहे जाते हैं, अंतिम प्रसिद्ध कवि नहीं। अपने ग्रंथ काव्य निर्णय के आरंभ में दास ने ब्रजभाषा प्रयोग के संबंध में लिखा है, ब्रजभाषा हित ब्रजवास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। यहाँ आचार्य ने प्रायः 300 वर्षों की ब्रजभाषा काव्य परंपरा को समझते हुए काव्य निर्णय का रचना काल 1746 ईस्वी है इस महत्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया है कि किसी व्यापक काव्य भाषा में रचना करने वाला कवि आवश्यक नहीं कि स्वयं उसी के क्षेत्र का निवासी हो। काव्य की परंपरा विकसित होने पर इतनी पुष्ट हो जाती है कि मौखिक रूप के अतिरिक्त उसे साहित्यिक रूप में भी सीखा और ग्रहण किया जा सकता है। भिखारी दास अवध के रहने वाले थे और उनकी यह उक्ति बहुत कुछ अपने काव्य प्रयत्नों का औचित्य सिद्ध करने के लिए भी हो सकती है, पर इस तरह तो हर कवि द्वारा लिखी हुई आलोचना अंततः आत्मरक्षा और आत्मस्पष्टीकरण का ही साधन होती है। भिखारी दास के उपर्युक्त भाषा लक्षण से मध्य देश अथवा हिंदी प्रदेश की काव्य भाषा के स्वरूप पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस समूचे क्षेत्र में वीर गाथा काल के चंद वरदाई से लेकर आधुनिक कवि अज्ञेय तक काव्य भाषा की एकता बराबर रही है। हर युग के कवियों ने एक स्वीकृत परिनिश्चित काव्य भाषा को अपनाया है, भले वे उसके आधार क्षेत्र के निवासी हों या न हों। चंद राजस्थान के थे और कबीर रमते साधु संत होने पर भी मूलतः भोजपुरी क्षेत्र के कहे जाते हैं, पर दोनों की रचना ब्रजभाषा या ब्रजभाषा खड़ी बोली के समन्वित रूप में है, जो उस समय काव्य भाषा के रूप में स्वीकृत हो चुकी थी। उससे कुछ पूर्व खड़ी बोली में काव्य रचना हो रही थी। दक्कनी के सूफी कवि अमीर खुसरो और स्वयं कबीर का काव्य जिसका प्रमाण है। इनमें से दक्कनी कवियों की रचनाएं हिंदी उर्दू की सम्मिलित काव्य भाषा के पृष्ठ संख्या 75 आरंभिक रूप का प्रमाण है, यद्यपि अपने छंद विधान और प्रस्तुत योजना आदि के कारण वे हिंदी की व्यापक काव्य धारा का अंग नहीं बन पाई। मध्यकाल में अधिकतर से ब्रजभाषा और अंशतः अवधि का प्रयोग होता है। आधुनिक काल में भारतेंदु से काव्य भाषा का आधार फिर बदलता है और ब्रजभाषा के स्थान पर फिर खड़ी बोली प्रतिष्ठित होती है। भारतेंदु ने स्वयं मध्यम मार्ग अपनाया था। कविता उन्होंने परंपरित ब्रजभाषा में लिखी और गद्य की नई चेतना उनकी खड़ी बोली में अभिव्यक्त हुई। भाषा और संवेदना दोनों दृष्टियों से भारतेंदु में उस युग की संक्रांति अवस्था को अच्छी तरह देखा जा सकता है। भारतेंदु का काव्य प्रायः मध्यकाल की ओर देखता है और उनका गद्य आधुनिक चेतना को रूपायित करता है। हिंदी काव्य भाषा के इस अनवरत विकास प्रक्रिया में हम पाते हैं कि कबीर ने जनभाषा के प्रवाह और शक्ति की ओर संकेत किया था और उसका रचनात्मक उपयोग किया था। 3 शताब्दियों के बाद भिखारी दास तक आते आते प्रवाह में उतनी गति नहीं रहती। अब भाषा को एक स्थिर माध्यम के रूप में देखकर उसकी जांच पड़ताल हो रही है। निरक्षर कवि से लेकर अधिक आचार्य तक की यह भाषा यात्रा है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक है कि भिखारी दास में रचनात्मकता कम और वर्गीकृत अलंकारों का प्रदर्शन अधिक हो। उनका अधिकांश काव्य परंपरित उपमानों का अभ्यास है। शास्त्र रचना होने के कारण यह इस प्रकार के काव्य की एक अंतर्निहित सीमा कही जा सकती है, पर रचना की कसौटी अंततः रचना है, उसमें किसी प्रकार की छूट मुमकिन नहीं होती। भिखारी दास की अलंकार योजना का एक प्रतिनिधि उदाहरण यहाँ प्रस्तुत है, छंद के प्रथम और अंतिम चरण के रूप में। अलक पे अली वृंद भाल पे अरध चंद भूपे धनु नयननी पैवारो कंज दल में अचल नितंबन पे जंगनी कदली खंब बाल पग तल वारो लाल मखमल में। ऐसे छंदों में लगता है कि शरीर रचना विलुप्त हो गई है, सिर्फ अलंकार ही अलंकार दिखते हैं। कवि की इस प्रवृत्ति से खींच कर ही आनन है अरविंद न फूल्यो वाले छंद को लेकर आचार्य शुक्ल ने व्यंग किया है। ऐसे संकट में पड़ी हुई नायिका शायद ही कहीं दिखाई पड़े, और तब समझ में आता है कि संकट अकेले नायिका का ही नहीं कविता का भी है। भिखारी दास यदि रीतिकाल के अंतिम प्रसिद्ध आचार्य हैं, तो पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि। पद्माकर के काव्य में रीतिकाल की सभी विशेषताओं का समाहार हो जाता है। भाषिक तराश, ध्वन्यात्मक संवेदनशीलता, लय विधान, कोमल श्रृंगार भावना और हल्की विचक्षणता, पर इसके बावजूद कोई भी एक विशिष्टता उनके कृतित्व में घनीभूत नहीं हो पाती। जैसे बिहारी की विचक्षणता, देव की तन्मयता, मतिराम की कोमल श्रृंगार भावना या कि घनानंद की लाक्षणिक शैली। इसलिए पद्माकर रीतिकाल के सर्वाधिक प्रिय कवियों में तो हैं, पर उनका अपना कोई वैशिष्ट्य नहीं उभर पाता। उनकी यदि कोई एक विशेषता कही जा सकती है तो सीधी सादी चित्रमयता, जो कवियों के सूक्ष्म और जटिल बिंब विधान से अलग है। यह चित्रमयता उनके प्रकृति वर्णन में भी है। औरे रस, औरे रीति, औरे राग, औरे रंग, औरे तन, औरे मन, औरे भन वह गए, और चेष्टा वर्णन में भी। नैन नचाई कही मुस्काई, पृष्ठ संख्या 76, लला फिर आइयो खेलन होरी, अथवा एके संग धाये नंद लाल और गुलाल दो, दुगनी गए जुभरी आनंद मढ़े नहीं, एरी मेरी बीर जैसे तैसे इन आखिन ते, कढ़ीगो अबीर पे अहीर तो कढ़े नहीं। और यही उनके व्यापक आकर्षण का कारण भी है। पद्माकर में श्रृंगार, भक्ति और वीर रस के विविध और सच्चे रंग हैं, पर रीति शैली सर्वत्र एक जैसी खिली है। भक्ति काल में अनुभव की समरूपता तरह तरह के कवियों को एक साथ लाती है, रीति काल में यह जोड़ने का दायित्व काव्य शैली का है। यों भक्ति काल और रीति काल में परस्पर विरोध उतना नहीं जितना कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। रीति काल में परिवार के जीवन का समग्र चित्रण एक साथ नहीं हुआ तो उसके अलग अलग पक्ष उकेर दिए गए हैं। रीतिकालीन कविता का विकास ब्रज भाषा के विकास से अभिन्न हो गया है, न सिर्फ भाषिक स्तर पर वरन राधा कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज क्षेत्र की संस्कृति के माध्यम रूप में भी। उत्तर मध्यकालीन ब्रज भाषा के विकास क्रम में यह बात आसानी से परिलक्षित की जा सकती है कि काव्य भाषा के सामान्य रूप में बहुत से उपमान और प्रतीक क्रमशः रूढ़ होते गए हैं। रीतिकालीन में ठाकुर जब अपने अनेक समकालीनों के प्रति संकेत करते हुए खीज और व्यंग के तीखे स्वर में कहते हैं, सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नैन, तो उनकी कठिनाई समझ में आती है। यह अकारण नहीं था कि भारतेंदु तक आते आते काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की क्षमता छीज जाती है और नई शक्ति संभावना के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग आरंभ होता है। यह हिंदी काव्य भाषा को असाधारण सुविधा रही है कि अपने लंबे विकास क्रम में एक आधार के चुकने पर वह दूसरे आधार को स्वीकार कर लेती है। यों यह भी इतिहास का तथ्य है कि ठाकुर के मीन मृग खंजन कमल नयन की ही तरह परवर्ती छायावाद के प्रतीक और उपमान कालांतर में रूढ़ हो जाते हैं और आवृत्त होने लगते हैं। कबीर और सूर से आरंभ हुई ब्रज भाषा कैसे विकसित और समृद्ध हुई और फिर कैसे उत्तर रीति काल में वह जड़ और स्थिर होती गई, इसका एक रोचक साक्ष्य इस काल के आचार्य कवि भिखारी दास में मिलता है, जिन्होंने काव्य भाषा में कोई नई क्षमता विकसित नहीं की, परंतु अपने काव्य निर्णय के आरंभ में ही काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा प्रयोग की शास्त्रीय व्याख्या की है। संत कबीर के समय से बहते नीर की तरह ही भाखा मानो आचार्य भिखारी दास तक आते आते फिर कूप जल में परिणत हो गई। रीतिकालीन काव्य भाषा में बहुत बार अप्रस्तुत विधान भाषा का अंग नहीं बन पाता, उसका अस्तित्व अलग ही बना रहता है। इसके विपरीत बिंब की प्रकृति है कि वह सामान्य काव्य भाषा में परिवर्तित हो जाता है। रीतिकालीन काव्य का बहुत सा अंश तो किन्हीं शास्त्रीय लक्षणों के उदाहरण रूप में लिखा गया है। ऐसी स्थिति में अलंकारों के सजग और यत्नज प्रयोग उसमें स्वभावतः अधिक हो गए हैं। इसके अतिरिक्त भी अलंकार विधान में प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों के संबंध में साथ साथ कथन होने के कारण कवि का कौशल रूप उभर कर आ जाता है। बात और भाषा का अभेद नहीं हो पाता। पर बिंब समग्र रूप में रचे जाने के कारण और अप्रस्तुत पर ही अधिक आधारित होने से अपेक्षया आसानी से काव्य भाषा के प्रवाह में घुल मिल जाता है। रीतिकालीन काव्य भाषा में बिंब प्रयोग कम और अलंकार विधान अधिक है। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा के चीजने का यह एक मुख्य कारण है, क्योंकि अलंकरण का विकास भाषा की सहज स्वाभाविक शक्ति की कीमत पर होता है, जबकि प्रत्येक बिंब अपने में विशिष्ट विधान होने के कारण आवृत्त नहीं होता और इसलिए उसके प्रयोग से काव्य भाषा समृद्ध होती है, शरित नहीं। पृष्ठ संख्या 77। मध्यकालीन काव्य भाषा में ब्रज भाषा का आधार सबसे अधिक समय तक प्रायः 300 वर्षों की अनवरत परंपरा में और सबसे अधिक क्षमता के साथ प्रयुक्त हुआ है। 1776 ईस्वी के आसपास लिखे गए अपने ब्रज भाषा के व्याकरण में मिर्जा खां का कहना है, भाखा विशेषता ब्रज प्रदेश और उसके निकटवर्ती क्षेत्र से संबंध है। इसी प्रसंग में वे आगे कहते हैं, संस्कृत और प्राकृत को छोड़कर भाखा में अन्य सभी बोलियां समाहित हैं। यहाँ यह स्मरणीय है कि मिर्जा खां के लिए हिंदी तथा भाखा पद समानार्थक है और वे ब्रज भाषा नहीं केवल भाखा कहते हैं। मिर्जा खां को भाखा सभी भाषाओं में सर्वाधिक क्षमतावान जान पड़ती है। उनकी दृष्टि में अलंकृत काव्य के लिए यह सबसे अधिक उपयुक्त भाषा है, साथ ही प्रेमी और प्रेमिका की प्रशंसा गायन के लिए भी। यह अधिकतर कवियों और सुसंस्कृत कवियों व्यक्तियों द्वारा बोली जाती और प्रयुक्त होती है। ए ग्रामर ऑफ द ब्रजभाखा, पृष्ठ 7। यहाँ अंतिम संदर्भ स्पष्ट ही रीतिकालीन श्रृंगारिक काव्य के लिए है। ब्रजभाषा का प्रयोग मध्यकाल में इतने विस्तृत रूप में हुआ, इसके कई कारण हैं। एक तो शौरसेनी प्राकृत और अपभ्रंश का सर्वाधिक दाय ब्रजभाषा में सुरक्षित रहा, इसलिए ग्रियर्सन ब्रजभाषा को साहित्यिक हिंदुस्तानी की तुलना में पश्चिमी हिंदी का श्रेष्ठतर प्रतिनिधि मानते हैं। भारत का भाषा सर्वेक्षण भाग 9 पृष्ठ 63। शौरसेनी अपभ्रंश से सीधे विकसित होने के कारण ब्रजभाषा में ध्वन्यात्मक लालित्य भी अधिक माना जाता है। फिर समूचे उत्तर भारत में कृष्ण भक्ति परंपरा से जुड़े रहने के कारण ब्रजभाषा का क्षेत्र विस्तृत होता गया। एक सीमा के बाद तो ब्रजभाषा में लिखने का अर्थ हो गया राधा कृष्ण संबंधी काव्य की रचना, और राधा कृष्ण संबंधी लालित्य भाव का ब्रजभाषा के ध्वन्यात्मक लालित्य से अभेद हो गया। यहाँ तक कि उर्दू के कवि भी बराबर अपनी काव्य भाषा में मृदुता और लालित्य विकसित करने के लिए ब्रजभाषा के शब्दों, विशेषतः ओकारांत आज्ञा अनुरोधार्थक क्रिया रूपों मेरा सलाम कहियो का प्रयोग करते रहे। ब्रजभाषा और उर्दू काव्य भाषा के अंतर संपर्क का विश्लेषण वस्तुतः अपने में एक स्वतंत्र अध्ययन का विषय है। नामवाची शब्दावली की दृष्टि से ब्रजभाषा अपने विकास में तत्सम की अपेक्षा तद्भव की ओर उन्मुख होती गई, यह कहना वस्तुतः एक सामान्य तथ्य की ओर संकेत करना और एक सामान्य सिद्धांत का समर्थन करना ही होगा। यों बिना पूरे आंकड़ों के इस संबंध में अंतिम रूप से कुछ भी कहना न्याय नहीं है, पर इतना अनुमान किया जा सकता है कि सूरदास से लेकर सेनापति देव और पद्माकर तक काव्य भाषा के गठन में तद्भवों का महत्व बड़ा है। इसका कुछ कारण भक्तिकाल की अध्यात्म परक संस्कृत शब्दावली के स्थान पर रीतिकाल की ऐहिक जीवन से संबद्ध तद्भव शब्दावली का आना है। ब्रजभाषा अध्यात्म से आरंभ होती है और शरीर के अनुभव में संपन्न होती है। यह दोनों अनुभव स्तर बराबर संश्लिष्ट भी होते रहते हैं। समूची मध्यकालीन काव्य भाषा अपने श्रेष्ठ रूप में मूलतः तन्मयता के अनुभव को विकसित करती है। यह तन्मयता चाहे भक्त भगवान संबंध की हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका संबंध की। उस युग के अधिकांश समाज के लिए तनाव न भाषा में था और न जिंदगी में। मध्यकालीन काव्य भाषा में जो एक तांता की स्थिति मिलती है, उसका एक कारण यह तनाव का न होना है। पर कभी कभी हमें एक तांता की प्रतीति एक रास्ता की सीमा तक पहुंचा देती है। रीतिकाल में ऐसा अनुभव कई बार होता है। वाक्य भंग, असाधारण और साहसिक शब्द प्रयोग, परस्पर विरोधी भाषिक वातावरण का आमना सामना इस युग की विशेषताएं नहीं है और न हो सकती थी। मध्यकालीन काव्य भाषा अपने परिष्कृत शब्द चयन, शांत लय और सपाट्य मात्रिक छंदों के प्रयोग से पहचानी जाती है, जहाँ धीरे धीरे तन्मयता की मनस्थिति पृष्ठ संख्या 78 विकसित होती है, जो उस युग की ब्रजभाषा का लक्षण बन गई थी। 19वीं शती के संघर्ष और तनाव के साथ इस तन्मयता का मेल नहीं खा सकता था। भारतेंदु ने कुछ समय तक तनाव और तन्मयता को साथ साथ ले चलने की कोशिश की। तनाव खड़ी बोली के गद्य में, नाटकों और पत्रकारिता में तथा तन्मयता ब्रजभाषा के कवित्व सवैयों और पदों में, पर यह स्थिति स्वभावतः अधिक चल नहीं सकती थी। अंततः खड़ी बोली समग्रतः काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई और उसके साथ साथ हिंदी क्षेत्र में नई शक्ति और चेतना का उदय हुआ। यहाँ एक रोचक तथ्य यह परिलक्षित किया जा सकता है कि उर्दू काव्य भाषा का आधार तो पहले से ही खड़ी बोली चली आ रही थी, पर इसके बावजूद उत्तर मध्यकालीन सामंतीय विलासिता के वातावरण में उर्दू काव्य बहुत समय तक छटपटाता रहा और अब तक उससे पूर्णतः मुक्त नहीं हो सका है। हिंदी काव्य भाषा ने क्योंकि अपना आधार ब्रज भाषा को छोड़कर फिर खड़ी बोली को कर लिया, इसलिए उसका पुनर्वार कायाकल्प संभव हो सका। हिंदी भाषा की बहुजनपदीय प्रकृति उसे कैसी शक्ति देती रही है, यह इसका अच्छा प्रमाण है।